अग्ने नयसु तथा राय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मद्युः प्राणमेनो भूयिष्ठान्ते न मैं उत्तिम विधेम। जब योगी या अभ्यासी परमात्मा की भक्ति में प्रवृत्त होता है या साधना में प्रवृत्त होता है, मंत्र जाप की अवस्था में भी ये अवस्थाएं आती हैं और ध्यान की अवस्थाएं में भी ये सात आठ अवस्थाएं आती हैं। और अगर ये नहीं आती हैं तो समझो परमात्मा के प्रति पूर्ण भक्ति जागृत नहीं हुई है, स्नेह और प्यार भी जागृत नहीं हुआ है। और वैसे ये बातें लोक व्यवहार में भी देखने में आती हैं, परंतु हम लोग तो इन बातों को परमात्मा के ही प्रति लेते हैं। एक तो जब अभ्यास में बैठा होता है अभ्यासी, पसीना भी पराया आया करता है और आ जाया करता है। और अगर किसी अपने बहुत स्नेही और प्यारे को मिलना होता है तो उस काल में भी मिलन में भी पसीना आता है, श्वेत कहते हैं इसको। और जब परमात्मा के मिलन का समय आता है, भक्ति स्नेह और प्यार जागृत होता है, तो वहां भी ये बात पैदा होती है कि पहले श्वेत पसीना शरीर में आने लगता है और दूसरा होता है फिर बहुत समय और प्यार उमंड पड़े तो अश्रुपात भी होने लगता है, आंखों में पानी भी आ जाता है। किसी अपने प्यारे को स्नेही को माता को, जैसे बच्चे बाहर से आते हैं आलिंगन करते माता पिता का, तो वहां भी ये बातें पैदा हुआ करती हैं। या कोई बहुत पुराने स्नेही प्यारे मित्र हों, बहुत वर्षों में मिले हों, वहां भी जब आपस में आलिंगन करते हैं दो सखी या दो सखा, तो वहां भी पसीना कुछ शरीर में आ जाया करता है, गर्मी सी जोश सी पैदा हो जाया करता है। और बहुत स्नेह जहां होता है फिर वहां आंखों में पानी भी आ जाता है, आंखों में पानी प्रसन्नता से भी आया करता है और दुख से भी आया करता है। परंतु उस काल में हर्ष को लिए हुए प्रसन्नता को लिए हुए ये बात जागृत होती है भगवान के प्रति भी। जब बहुत भक्ति भाव जागृत होता है तो उस काल में भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मैं वृंदावन में रहा करता था तो वहां कीर्तन को बहुत महत्व दिया जाता है, ध्यान समाधि योग का इतना महत्व नहीं माना, वहां भक्ति की प्रधानता है और भक्ति के ये अंग गिने जाते हैं। तो वहां ये देखा है कि कीर्तन करते करते एक समय ऐसा आता था अंतिम का, दो तीन घंटे कीर्तन होता था कि सब लोग आन करके अंत में 8-7 हजार आदमी वहां होता था, मेरे ख्याल में 4-5 हजार आदमियों के आंखों में आंसू बहते में देखा करता था। और मैं बड़ा कट्टर कुछ बैरागी सा था और ये माताओं को किसी को और किसी को रोते देखा करता था तो उनको मूर्ख समझा करता था, ये ऐसे रोते मूर्ख हैं। मेरी आंखों में 35-40 वर्ष तक कभी आंसू नहीं आए, ऐसा कट्टर वैरागी था, ऐसी धारणा का आदमी था, अकेला सा मनमुखी सा। तो 35 से 40 वर्ष की आयु बराबर रही तो मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, दुख से वेदना से पीड़ा से हर्ष से पसंद से। तो वहां वृंदावन में कोई 8-7 हजार आदमी कीर्तन कर रहे थे तो जब डेढ़ घंटा हो गया मैं भी वहां सुनता रहा, अच्छे परमात्मा की भक्ति के हो रहे थे और वहां लीला भी हुआ करती है कृष्ण और राधा वगैरह की इनकी। तो देखा मैंने कि ये 5-6 हजार आदमी और मेरे सामने जितने भी नजर आ रहे थे सबके आंसू बह रहे थे प्रेम से भक्ति के, और मेरे दिल में भावना पैदा होने लगी कि मैं कैसा कट्टर शुष्क आदमी हूँ, नीरस आदमी हूँ ये, और इतने वर्ष से मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मेरे हृदय में उसके प्रति इनके समान प्रेम ही जागृत नहीं हुआ, तो मुझे वो क्या मिल सकता है। तो इस प्रकार की भावना मेरे हृदय में वहां पैदा होने लगी उनको देख करके। मैंने 35 वर्ष साधना करी है और ये बेचारे साधारण व्यक्ति अनपढ़ यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं, स्त्री पुरुष बच्चे, ये तो भगवान के वियोग में रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, और तैने कभी उसके वियोग में आज तक कोई आंसू ही नहीं बहा। तो ये भावना मेरे मन में पैदा होने लगी। फिर मैं इधर उधर देखता रहा, मेरे साथ में 5-7 भक्त थे, वो भी होने रो रहे थे, और सब मेरे आसपास कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आ रहा था जो नहीं। तो उनको देखा देखी मेरा हृदय भी पसीज गया। फिर मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई ये ना कह देखे कि ये बड़ा भारी योगी था, ये क्यों रोने लगा, ये तो बड़ा कट्टर वेदांती सा था, बड़ा शुष्क बैरागी सा था, और ये क्या, मुझे तो कोई नहीं देखता। मैं देखा सारे ही रो रहे हैं, तो फिर अब तुझे भी रोने में क्या बात है। रोने को मेरा भी दिल कर रहा था, पता नहीं रोमांच से खड़े हो रहे थे और उनको देख करके प्रीति भक्ति सारी बातें जागृत सी हो रही, तो मेरी भी आंखों में पानी बहने लगा और इतना बहा कि 3 घंटे लगातार पानी बहता रहा, मैं रोक ही नहीं सका। 35 वर्ष का जो रुका हुआ पानी था अश्रु से सारे बह निकले और मेरी वाणी गदगद होगी, वहां का वो भी चले गए सब उठ उठा करके उनका भी, और मैं रोता ही रहा। मेरे बस से बाहर की बात हो गई। तो ये तो हुआ दृष्टांत। दृष्टांत इसका ये है कि जब भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रीति जागृत हुआ करती है तब ये सात्विक भाव विकार कहलाते हैं, जैसे कि पसीने का आना और अश्रु का बहना। बाकी और भक्ति भक्त में जागृत नहीं होती है तब तक हृदय में आर्द्रता, नरमी, कोमलता, सरलता, स्नेह, प्यार, ये बातें पैदा नहीं हुआ करती। और जहां कोई दो मित्रों का मिलन होता है वहां भी कुछ ऐसी बातें हुआ करती है, परंतु परमात्मा के प्रति जब भक्ति जागृत होती है वहां भावना कुछ दूसरी होती है और मित्र के मिलने में भावना दूसरी होती है। जैसे दूर देश में पत्नी गई हो, पति गया हो, बहुत देर के बाद आया हो पति, तो वहां भी इस प्रकार के सात्विक भाव विकार स्नेह और प्यार के जागृत होते हैं, मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, पसीना भी आ जाता है और रोमांच भी खड़े हो जाते हैं और आंखों में पानी भी स्नेह और प्यार से आ जाया करता है। तो तीसरी बात कही है रोमांच का खड़ा होना, रोंगटे खड़े हो जाना। जहां स्नेह और प्यार जागृत हुआ करता है वहां रोमांच भी, सर्दी से भी रोमांच खड़े होते हैं, तो वहां परंतु अंतर होता है। स्नेह और प्यार में भी रोमांच खड़े हो जाया करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। तो ये सात्विक भाव विकार भक्त के कहलाते हैं। फिर कंपन भी होने लगा करता है, बच्चा कोई देर से आन मिले, बच्चा भी माँ से प्यार करता है, कांपने से लगता है, पानी आंखों में आंसू भी ले आता है, तो रोमांच भी और कंपन भी, ये बातें हुआ करती हैं। इसके बाद में स्वरभंग, बातें करना चाहता है तो वाणी गदगद सी जाती है, बोल नहीं पाता, शब्द नहीं निकाल पाता, तो स्वर भी भंग हो जाया करता है। ऐसे ही भक्त का जब ध्यान, जब कीर्तन आदि करता होता है, ध्यान समाधि आदि में बैठा होता है, तो वहां भी जब समाधि के उठने के पश्चात बोलता है या कुछ करता है तो ये वाणी बंद सी हुई होती है। जब बोलता है तो स्वर भंग वाणी मोटी सी बन जाती है दम दम करके। जो बहुत देर तक समाधि लगाने वाले होते हैं ना, तो ये बंद पड़ी रहती है वाणी। तो जब समाधि से उठते हैं जल्दी जल्दी बोलने की सामर्थ्य नहीं होती तो स्वर भंग हो जाया करता। तो ये स्वर भंग भी होता है इसमें। और विवरण, विवरण कहते हैं कांति, वह मुख में जैसी चमक दमक पहले होती है, वह उस काल में वो विवरणता चमक दमक सी नहीं रहती, कुछ पीलापन सा आ जाता है, कुछ उदासी सी मन मस्तिष्क पर या चेहरे पर छाई होती है, तो विवरणता भी आ जाती है। अंत में दो और आते हैं, स्तंभ और प्रलय। जब बहुत देर तक बैठना होता है 10-5-20 घंटे, तो शरीर स्तब्ध हो जाया करता है, जड़ सा हो जाता है, चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती, उठाने की आसन खोलने की शक्ति नहीं रहती, स्तब्ध हो जाता है। और स्तब्ध होने के बाद मन और आदि प्रलय में चले जाते हैं, विलीन से हो जाते हैं, मन का संबंध शरीर से रहता ही नहीं, मन ऐसी स्थिति में चला जाता है जैसे निद्रा की स्थिति होती है। तो ये निद्रा जैसी स्थिति में अंत में प्रलय उसको कहते हैं, कि जैसे निद्रा में केवल सुख और दुख की अनुभूति होती है, तो इसी प्रकार उस काल में जब प्रलय होता है, प्रलय तो आसन की बैठने की सारी बातों के पहले तो सख्त हो गया, सख्त जड़सा हो गया और शरीर, और फिर मस्तिष्क भी जड़ सा हो जाता है, शून्य हो जाता है, मन का भी अभाव सा हो जाता है, तो मन निरुद्ध हो जाता है, और निरुद्ध होकर के अपने स्वरूप में जैसे रात्रि को लीन सा हो जाता है निद्रा में, इस रूप में जाकर के ठहरता है। तो जैसे आदमी 6 घंटे अगर निद्रा को ज्यादा बढ़ा लिया जाए तो 5-10-20 घंटे 2-4 दिन भी बढ़ सकती है बढ़ाने से, मैंने इसकी प्रैक्टिस की है एक बार, तो निद्रा में भी स्तब्धता आ जाती है और मन का भी भान नहीं रहता, केवल सुख दुख की प्रतीति जरूर रहती है निद्रा में, क्योंकि उठने के पश्चात अनुमान करता। ऐसे उस परले काल की अवस्था में भी कुछ न कुछ अनुभूति जरूर रहती है, उठने के बाद चाहे योगी यही कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं रहा या बहुत आनंद आया, कुछ न कुछ कहेगा। तो ये 8 बातें योगी के अंदर, अभ्यासी के अंदर, भक्त के अंदर आनी चाहिए, बातें भक्तों को याद रखनी चाहिए। एक तो शरीर में पसीने का आना, दूसरा अश्रु आंखों में आना, तीसरा रोमांच खड़े होना, और चौथा कंपन होना, 5वां स्वर का भंग होना, 6ठा मुंह का विवरण कांतिहीन होना, और 7वां स्तब्ध हो जाना, और 8वां मन और शरीर विलीन से हो जाए। ये 8 बातें भक्त में आनी चाहिए जीवन के अंदर।